बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दक्षिण कल ही राजस्थान से लौटा हूँ। अच्छा हुआ एक दिन पहले चला गया, लंबी यात्राएं, बहुत लंबे सफर। सोमवार को सदर शहर में सत्संग था, शाम का समय उन्होंने रखा हुआ था सत्संग का। सत्संग 6 बजे ही शुरू कर दिया था अंतवाणी का पाठ। 7 से 8 बजे तक उन्होंने दीक्षा का कार्यक्रम रखा हुआ था। बहुत मेहनत करी हुई थी साधकों ने, बहुत पहले काम किया हुआ था। परमेश्वर ने उनकी मेहनत से कहीं ज्यादा अधिक उन्हें पुरस्कार दिया। कृपा तो परमेश्वर की ही चाहिए, कुछ भी आप कर लो। इतनी उपस्थिति उन्हें अपेक्षित नहीं थी, इतनी हुई। ना ही इतनी दीक्षा अपेक्षित थी जितनी हुई। 5,500 के आसपास उन्होंने पैकेट्स मंगवाए हुए थे, वो तो खत्म होते पता ही नहीं चला। 2,000-3,000 पैकेट्स की और जरूरत। ऐसे ह्यूज क्राउड, रात्रि का समय, सत्संग भी कहीं बाहर रखा हुआ था नगर से। अच्छा लगा कि स्कूल के और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स आए हुए थे, उन्हें उन्होंने प्रबंधकों ने अलग कर दिया। इनका तो कुछ हिसाब तब रखा जाएगा, जो गांव-गांव से आए हैं और जिन्हें पैकेट्स नहीं मिले उन्हें कैसे ढूंढते रहेंगे। स्कूलों में कॉलेजों में जाना आसान रहेगा, कंट्रोल बेटर रहेगा। अतएव उनको पैकेट्स नहीं दिए। 8,000 से 150 ज़्यादा भी हो सकते हैं और 150 कम भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा हमें भी 1-2 दिन लगेंगे सही संख्या बताने में। 5,500 पैकेट्स तो लग गए थे जो यहाँ से गए हुए थे। अगले दिन साधकों सत्संग पीलीबंगा में था। मंगलवार का दिन लगभग 500 किलोमीटर का सफर था। सिर में अभी भी कार घूम रही है। सत्संग था, 3 बजे का समय उन्होंने रखा हुआ था, 2 से 3। वहाँ राजस्थान की प्रथा बहुत अच्छी है, श्री अमृतवाणी जी का पाठ मैं वहाँ हूँ ना हूँ वह शुरू कर देते हैं। वे समझते हैं कि इससे इसका टाइम थोड़ा बचेगा, हमें समय ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसी उनकी सोच है। वहाँ पर भी ना ही इतनी उपस्थिति की अपेक्षा थी और ना ही इतनी दीक्षा की। फिर भी उन्होंने 1500 के करीब पैकेट्स मंगवाए हुए थे यहाँ से, वे तो लग गए। संख्या देखने से यही लग रहा था कि यहाँ भी पैकेट्स थोड़े पड़ेंगे। मैं तो वहाँ से 3:30 बजे फिर चल पड़ा था, रोहतक पहुँचना था। लगभग 5 घंटे की नॉन स्टॉप जर्नी थी। 8:30 बजे के आसपास ही रोहतक रात को पहुँचा हूँ। रास्ते में उन्होंने सूचना दी कि जो पैकेट्स थे हमारे पास 1500, वे तो लग गए हुए हैं। 350 की लिस्ट हमारे पास तैयार हो चुकी हुई है, अभी और कर रहे हैं। पूरी लिस्ट हम इतनी जल्दी नहीं दे सकेंगे, पूरी संख्या हम इतनी जल्दी नहीं बता सकेंगे। सो 2 सत्संगों में साधकों को 10,000 की दीक्षा मुझे परमेश्वर कृपा के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने भी मेहनत करी होगी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत मेहनत करी हुई है उन्होंने, बहुत सत्संग किए हैं, जगह जगह जाके बहुत प्रचार प्रसार किया है, स्कूलों में कॉलेज में जाके। कोई पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने एनसीसी वाले कह रहे थे कि 250 लोग एनसीसी वाले आए हैं, मुझे पता नहीं क्या अर्थ था इसका, कहाँ से आए होंगे। कॉलेज के स्टूडेंट्स महिलाएं थी ज़्यादा, उन्होंने कहा कि एनसीसी की स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं मुझे नहीं क्या अर्थ होगा इसका। सो इस प्रकार से साथी सुनो, सारी यात्रा उन प्रबंधकों के लिए वॉज वेरी रिवॉर्डिंग। एक बात, जब भी मैं राजस्थान जाता हूँ मैं उनकी इस बात से बहुत प्रभावित होता हूँ। पहुँचते ही तिलक करते हैं, मेरे लिए वह भूलना बहुत मुश्किल। छोटी कन्याएं उन्होंने तैयार की होती हैं, वेल ड्रेस्ड, बहुत सुंदर सजी हुई होती हैं। जिस ढंग से वे तिलक करती हैं, जिस श्रद्धा से, भूला नहीं जा सकता। मानो बच्चों को ये बात सिखाई जाती है, तिलक कैसे किया जाता है। हमारे बच्चे बच्चियों को इस बात का पता हो, बड़ों को ही पता नहीं है तो बच्चे बच्चियों को क्या पता होगा। वहां लगता है कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, तिलक ऐसे लगाया जाता है। छोटी बच्ची है या थोड़ी बड़ी, जैसे वो ठोड़ी को ऊपर पकड़ के तो यहाँ लगा के फिर ऊपर खींचती है तिलक को, मैं गदगद हो जाता हूँ। नथिंग इज मैकेनिकल, कोई फॉर्मेलिटी जैसी बात नहीं दिखाई देती। यदि मैं उनसे कहूँ उस वक्त कि मेरे सिर पर हाथ, छोटी बच्ची को भी कहूँ कि मेरे सिर पर हाथ रख के प्यार करो, मुझे आशीर्वाद दो, तो वे देने को तैयार। माला उनका मौली बांधने का ढंग भी बहुत निराला, ऐसा ढंग तो जो शास्त्र में वर्णित है कोई कोई पंडित करता है, हर कोई पंडित भी नहीं करता। मौली के कितने चक्र होने चाहिए ये कोई कोई ही पंडित जानता है। शास्त्रों ने जो वर्णित किया है वह बिल्कुल उस ढंग से वे बच्चियां मौली बांधती हैं। गांठ लगाने का तरीका भी उनका बहुत परफेक्ट, ऐसा नहीं कि उसे तोड़ना पड़े बाद में, ना खोलने के लिए, बिल्कुल छोटी बच्ची भी बड़ी भी। कुछ स्मरणीय बातें आपकी सेवा में अर्ज करती। स्वामी महाराज ने आज भक्ति प्रकाश में शबरी का प्रसंग लिया है। मतंग ऋषि की शिष्य है शबरी, नीच जाति की है, काली है, स्वामी महाराज ने लिखा। जाति अच्छी नहीं, सूरत अच्छी नहीं, मानो शक्ल अच्छी नहीं, नथिंग इज अट्रैक्टिव, लेकिन परमात्मा इन बातों को कहाँ देखते हैं। ये तो भाव के भूखे हैं, भक्ति के लिए भूखे हैं। रामायण जी में दो नारियां देवी सचिव बिन बुलाए जिनके पास प्रभु गए हैं, एक अहिल्या और दूसरी शबरी। दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, दोनों में निष्ठा एवं धैर्य का प्रबल्य। दोनों की गुरु के प्रति इतनी निष्ठा है, भक्ति के प्रति इतनी निष्ठा है, प्रीति के प्रति इतनी निष्ठा है, और फिर धैर्य तो असीम है। अहिल्या से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आश्रम में रह के ऋषि पत्नी हो गई, एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। संत महात्मा कहते हैं उसने जो निष्ठापूर्वक धैर्यपूर्वक पश्चाताप करके तो प्रायश्चित किया, तब भगवान कहां देखते हैं कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया है। जहां निष्ठा का धैर्य का प्रबल हो जाया करता है वहां कोई ना कोई संत महात्मा परमात्मा भेज देते हैं जो उनका केस परमात्मा के सामने प्रस्तुत कर दे, उन्हें परमात्मा के सामने पेश कर दे। दोनों के साथ ऐसा ही हुआ है। अहल्या के लिए महर्षि विश्वामित्र को भेजा और मां शबरी के लिए तो उनके गुरु महाराज ही उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। शबरी बिटिया मैं तो बिना राम दर्शन जा रहा हूं, नाम दान दिया था, राम नाम दिया था, राम राम जपती थी, प्रतीक्षा करना। गुरु महाराज ने क्या कहा, प्रतीक्षा करना शबरी, मैं बेशक बिना राम दर्शन जा रहा हूं, तुझे प्रभु राम इस कुटिया में आके दर्शन देंगे, राह देखना। ये शब्द गुरु महाराज के शबरी ने पल्ले बांध लिए। उसने हमारी तरह प्रतीक्षा नहीं की, नहीं आए तो द्वार बंद कर दिया, ना आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं कभी उठा शबरी के दिलो दिमाग में। मेरे गुरु महाराज ने कहा है शबरी प्रभु इसी कुटिया में आएंगे तो आएंगे, कभी द्वार बंद नहीं किया, किस वक्त आ जाएं ऐसा तो गुरु महाराज ने नहीं कहा, कब आ जाएं ऐसा तो गुरु महाराज ने कुछ नहीं कहा। मानो जब तक मेरा जीवन है उससे पहले पहले ही आएंगे और मुझे हर वक्त प्रतीक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। न जाने दिन में कितनी बार सफाइयां करती है, कितनी बार रास्ते के फूल बिछाती है, कितनी बार जंगल जाके फल लाती है, फ्रेश बासी में नहीं दूंगी, बेर इत्यादि जो कुछ भी कंदमूल जो कुछ भी बैठाती थी ताजे ला के रखती थी, चक चक के रखती थी। कहते हैं शबरी को हर पेड़ का पता लग गया हुआ था, किसके ज्यादा मीठे हैं किसके कम मीठे हैं, इतना अभ्यास इतनी प्रतीक्षा उसने कर लिया है। हम तो प्रतीक्षा करते हैं तो जब होता है कि आज तो नहीं आने वाले तो हम द्वार बंद कर देते हैं। शबरी की प्रतीक्षा ऐसी नहीं थी, उसने कभी द्वार बंद नहीं किया, उसकी प्रतीक्षा में सत्य था, उसकी प्रतीक्षा वास्तविक प्रतीक्षा थी। भले ही साधु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं हमारी साधना में और शबरी की साधना में बहुत साम्य है, बहुत सिमिलरिटी है, हम भी राम राम जपते हैं और अगला काम जो करेगा वह बाजी मार जाएगा प्रतीक्षा का। ध्यान का समय ही प्रतीक्षा का समय नहीं है। शबरी ये नहीं बताती कि आप सुबह शाम ही प्रतीक्षा करें, ना, शबरी कहती है राम राम जपिए और दिन रात प्रभु की प्रतीक्षा करिएगा। मैं आश्वासन देती हूं कि वह एक ना एक दिन आपका द्वार आके खटखटाएंगे। शबरी द्वार खोल में आ गया हूं। निष्ठा एवं धैर्य का सातत्य होना चाहिए और प्राबल्य होना चाहिए तो ईश्वर अपनी अनुभूति अपने मंगल दर्शन अनुभूति करवा के रहेंगे, मंगल दर्शन दे के रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। अति शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धन्यवाद।